मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 14 अक्टूबर 2015 है और आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी के साथ साथ मैं अपने उन दो नौजवान साथियों का विशेष रूप से स्वागत करता हूं, जिन्होंने एकेडमी की फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दो दोस्तों के नाम हैं दीप रंजन कुमार सोनपुर बिहार से और राजेश कुमार दिल्ली से। दीप रंजन और राजेश, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत से मेल मिले हैं और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उसमें बहुत से मेल ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने प्री क्वालिफाई करने की सूचना दी है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं उनके नाम लूं, तो जिन्होंने भी प्री क्वालिफाई किया है, चाहे वो एकेडमी से जुड़े रहे हैं या नहीं रहे हैं, वो ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सूचना देना एक जरूरी समझा, समझ लीजिए, या उनको अच्छा लगा सूचना देने में, तो उन सभी को मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, अपने सभी बैचेस के स्टूडेंट्स की तरफ से, अपनी एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही दोस्तों, उनके लिए शुभकामनाएं भी कि वे मेंस के एग्जामिनेशन में भी इसी तरह सफलता की सूचना मुझे दे। तो मित्रों, जिनकी मुझे सूचनाएं मिली हैं उन दोस्तों के नाम हैं शौर्या, आप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, आपने लिखा है कि आप एकेडमी की स्टूडेंट रही हैं। यदुवंश मणि कृष्ण कोची केरल से रहे हैं, केरल से हैं, ये भी एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं। नवीन ज्योत कौर अमृतसर से हैं, ये भी स्टूडेंट रही हैं। दिलमिल सिंह सोच, ये भी एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं। मित्रों, इन्होंने तो लिखा है कि, मतलब मेंशन किया हुआ है कि ये एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं। अब मैं जिन दोस्तों के नाम लेने जा रहा हूं, इन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि वो एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं, हो सकता है रहे भी हो, लेकिन इन लोगों ने ये जरूर मेंशन किया है कि जो डेली ऑडियो गाइडेंस वो सुन रहे हैं और जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स उन्हें मिल रही हैं और यहां तक कि जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए, उन सब ने इन सभी की सफलताओं में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इसके लिए सभी ने एकेडमी को मुझे धन्यवाद प्रेषित किया है, आभार व्यक्त किया है। इन मित्रों के नाम हैं प्रणव कटारिया अहमदाबाद से, दीपक कुमार चंडीगढ़ से, रमेश मीना जयपुर से, अनुराधा दिल्ली से, जितेंद्र सिंह सूरत से और प्रेम दिल्ली से। तो एक बार मैं फिर से नाम ले देता हूं, प्रणव कटारिया, दीपक कुमार, रमेश मीना, अनुराधा, जितेंद्र सिंह, प्रेम, शौर्या, यदुवंश मणिकृष्ण, नवीन ज्योत कौर और दिलमिल सिंह, आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाइयां और आप सबकी सफलता के लिए हम ईश्वर से मिलकर कामना करते हैं। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, नवीन ज्योत कौर फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रही हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो क्लास अटेंड करने के लिए अपनी मां के साथ भोपाल आई थी और काफी इंट्रैक्शन भी रखती थी। इसी तरह से दिलमिल सिंह सोच भी मुझे ध्यान आ रहा है, उनका चेहरा मुझे स्मरण आ रहा है, बहुत ही जिंदा दिल किस्म के स्टूडेंट रहे हैं। खासकर मैंने नवीन ज्योत और दिलमिल सिंह का नाम यहां इसलिए भी लिया है मित्रों कि आज जितने भी मेल आए हैं उनमें ये दो मेल बहुत अच्छे मेल रहे हैं और अब मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि यदि उसमें से कोई मेल अच्छा होगा तो एक दो मेल छांट कर मैं उसे विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा और शुभकामनाएं भी। तो नवीन ज्योत कौर और दिलमिल सिंह सोच, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस बात के लिए बहुत प्रशंसा की, आप लोगों ने बहुत अच्छे मेल लिखे हैं। और देखिए, जब मैं मेल की जो परिभाषा बताता हूं कि अच्छा मेल का क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये नहीं कि आप तारीफ लिख रहे हैं तो अच्छा मेल हो गया। उसकी परिभाषा यह है कि भाषा की कसावट कैसी रही है, शब्दों का चयन कैसा रहा है और जो बात आप कहने जा रहे हैं वो वास्तव में कितने इफेक्टिव तरीके से आप कह पा रहे हैं। तो अच्छे मेल की डेफिनेशन ये है, और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं इसकी चर्चा कर भी रहा हूं, तो अब मैंने सोचा है कि इसे मैं रेगुलर बेसिस पर ही करूंगा, क्योंकि मित्रों मैं मानकर चलता हूं कि सिविल सर्विस परीक्षा में जो भाषा है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो कम से कम वे स्टूडेंट जिनकी भाषा अच्छी है उन्हें कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि भाषा के स्तर पर उन्हें कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है, और एक अच्छा अस्त्र उनके पास है, इससे उनमें आत्मविश्वास भी आएगा और डेफिनेटली वो उसका इस्तेमाल भी पहले से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अब हमारी जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं ये भी अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए, घड़ी की सुई की तरह टिक 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 करके हम लगभग उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं। मैं एक सूचना अपने उन सभी स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा जो अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं, और वो सूचना ये है फ्रेंड्स कि एकेडमी में जो बेंतन बुक्स है वो कुछ किताबें भी प्रकाशित करते हैं, लगभग 50-55 टाइटल्स एकेडमी की आ चुके हैं, और मेरी जितनी भी किताबें हैं वो बेंतन बुक्स ही प्रकाशित करती है, जिसमें आईएएस वाली किताब है, आपके फ्रीडम में जो आज़ादी की कहानी है, हिंदी सही हिंदी सुंदर हिंदी है, आप आईएएस कैसे बनेंगे, सारी जो किताबें हैं हिंदी इंग्लिश की ये बेंतन बुक्स के पब्लिकेशन की किताबें हैं। तो पहले ही बैच से फिर हम लोगों ने ये फैसला किया कि जो स्टूडेंट क्लास में आएंगे उन्हें वे सारी किताबें जो यहाँ से पब्लिश्ड हैं उन्हें 50% रिबेट पर प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि अगर कोई किताब 200 रुपए की है तो वो किताब आपको यहाँ 100 रुपए में दी जाएगी, और ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ क्लास अटेंड करने आएंगे। आप इसे सच पूछिए तो हम लोगों की तरफ से एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट आप मान लीजिए, क्योंकि मित्रों मैं शुरू से किताबों से बहुत जुड़ा रहा हूँ, बेहद प्यार करता हूँ, और मैं चाहता भी हूँ कि दूसरे लोग भी किताबों से जुड़ें और उसे बेहद प्यार करें। अब उसके लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया जा सकता है मैं अपने स्तर पर करने की कोशिश करता हूं, और उसी करने के रूप में ये एक छोटा सा करना है कि मुझे लगता है कि यदि हम किताबें उन्हें सस्ते में प्रोवाइड करेंगे तो शायद वो किताब ले जाएंगे, और ले जाने के बाद न केवल वे खुद पढ़ेंगे बल्कि उनके परिवार के दूसरे मेंबर्स भी वे किताबें पढ़ सकेंगे। तो इस तरह से एक जो अध्ययन की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से और एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा गिफ्ट देने की दृष्टि से हम लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है। तो जो भी स्टूडेंट आप सब आ रहे हों आप प्लान कर सकते हैं, जब यहाँ आएंगे तो आपको पूरी किताबों की सूची प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कौन कौन सी किताबें अवेलेबल हैं, आप छांट सकते हैं और ये जितनी किताबें भी आप चाहें आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स इस सूचना के बाद अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट पर। मित्रों कल पता नहीं कैसे मेरे पास बहुत से मेल आए हैं, इतने अधिक मेल कभी कभार ही आते हैं, नो डाउट कि उसमें बहुत से मेल इस बात को लेकर के हैं कि सर हम सफल हो गए, प्री हमने क्वालिफाई कर लिया, और बहुत से मेल इस बात को लेकर के भी हैं कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, और बट नेचुरल है कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनकी भाषा में एक तरह की निराशा है, एक तरह का अवसाद है और एक तरह की चिंता भी है, और जो बहुत स्वाभाविक भी होती है। कुछ लोगों के पेरेंट्स को भी बड़ी निराशा हुई होगी, और डेफिनेटली चूंकि पेरेंट्स बहुत उम्मीद लगाए रखते हैं, बहुत आपकी सफलता की प्रतीक्षा भी करते हैं, उन्हें उन पर एक तरह से आर्थिक दबाव भी पड़ता है, और अगर इस तैयारी करने वाली बिटिया हुई तो स्वाभाविक रूप से विवाह की भी चिंता उनके दिमाग पर एक होती है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्हें सफलता नहीं मिल पाई है और यदि उनके पेरेंट्स थोड़े से गुस्सा हो रहे हैं, थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ो और अब कुछ काम करो, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बियर करें, वो पेरेंट्स की निगाह से इसे देखने की कोशिश करें कि जो निराशा आप में है, जो हताशा आप में है, डेफिनेटली पेरेंट्स में भी वही निराशा और हताशा है। क्योंकि वो आप से जुड़े हुए हैं और वो अब उनका जो भविष्य है या कह लीजिए कि जो जीवन बचा हुआ है आपके माध्यम से ही आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जरा सा पेरेंट्स के एंगल को देखें, और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो थोड़े से अपने बच्चों के एंगल से देखें। बच्चों के एंगल से देखने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जानबूझकर असफल नहीं हुए हैं। ये परीक्षा है ही कुछ इतनी बड़ी, कठिन या बहुत ही चैलेंजिंग है कि सच पूछिए तो सफलता की संभावना असफलता की तुलना में बहुत छोटी सी होती है। जैसा कि कल मैंने या परसों आंकड़े भी आप लोगों को बताए थे कि लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट बैठे हैं और उसमें से सिर्फ 15,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परसेंट रिजल्ट रहा, हार्डली 3% रिजल्ट रहा है, मतलब 100 में 3 लड़के सफल हुए हैं। तो पेरेंट्स जरा सा इसको थोड़ा सा बियर करें, अपने को नियंत्रण में रखें, अपने को संतुलित रखें, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आपके ही बच्चे हैं और उन्हें लगातार आप लोगों के सहयोग की, और सहयोग की ही नहीं बल्कि मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे समय में खासकर जब खुद बच्चा एक निराशा के दौर से गुजर रहा है, उसके अंदर डेफिनेटली आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं पेरेंट्स के, उसको लेकर के उसके मन में एक अपराध बोध भी होता है। वो ये भी सोचता है कि मेरी एज इतनी हो गई है, मुझे तो अब कमा करके अपने माता पिता की और पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए, वहां मैं खुद उनसे मदद ले रहा हूं। तो इस तरह के मानसिक मंथन से बच्चे भी गुजरते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे समय में एक अनुभवी और एक प्रौढ़ पेरेंट्स होने के नाते हमें भी थोड़े से धैर्य का परिचय देना चाहिए और बच्चों के साथ कदम मिलाकर, या कह लीजिए कि निराशा के इन क्षणों में उसके साथ खड़े होने का साहस थोड़ा दिखाना चाहिए। तो सभी पेरेंट्स से मेरी ये अपील है, और चूंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूं, हम सब लगभग कमोबेश इसी दौर से गुजरते हैं। किन्हीं के बच्चे कॉलेज में असफल होते हैं, किन्हीं के बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में असफल होते हैं, किन्हीं के बच्चे बिजनेस में असफल होते हैं, किन्हीं के बच्चों के सामने और दूसरे तरह के अलग अलग संकट आ जाते हैं। तो दोस्तों रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो गुजरना होता है इस दौर से वो लगभग समान रूप से होता है। तो मैं पेरेंट्स से, हालांकि उन्हें हो सकता है कि थोड़ा सा खराब भी लगे कि मैं कौन होता हूं इस तरह की बात करने वाला या इस तरह की नसीहत देने वाला, लेकिन मित्रों चूंकि ये स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ सवाल है, मुद्दा है, समस्या है, कुछ मेल्स में भी मुझे ऐसा आभास हुआ, इसीलिए मैं पूरी माफी के साथ और माफीनामे के साथ और पूरी विनम्रता के साथ पेरेंट्स से भी इस बात की याचना करना चाहूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को समझें, इस संकट की घड़ी में उनको हिम्मत बंधाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने बिखरे हुए हौसले को इकट्ठा करके फिर से आगे दौड़ के लिए तैयार हो जाएं। और एक बार फिर से स्टूडेंट्स से भी मेरी अपील है कि वो भी अपने माता पिता की निराशा हताशा को समझने की कोशिश करें और उनकी बातों को बिल्कुल इस रूप में न लें, अन्यथा न लें कि वे आपके विरोधी हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि आप सिविल सर्वेंट बने या दूसरे भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों सीधी सी बात है कि जब हम उम्मीद करते हैं और जब उम्मीद टूटती है तो उससे निराशा तो होती ही है। जब बर्तन नीचे गिरकर टूटता है तो आप देखते हैं कि आवाज टूटने की होती ही है। तो उनकी आवाज को इसी तरह से एक अस्थाई रूप से लें, परमानेंट नहीं है, चाहे वो उनका गुस्सा हो, उनकी नाराजगी हो, उनकी शिकायत हो, अंततः हैं तो वो आपके ही। तो मित्रों इस समय में कम से कम जिस तरह से कि हम पानी को चाहे कितनी भी कोशिश करें हम काट नहीं सकते, चाहे कितनी भी मजबूत तलवार ले लें, चाहे कितनी भी धारदार तलवार ले लें, कितनी भी धारदार चाकू ले लें, हम थोड़े सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए लकीर तो खींच सकते हैं लेकिन पानी को काट नहीं सकते। इसी तरह से का रिश्ता पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में होता है, इसीलिए दोनों ही ओर से अभी जो कुछ भी थोड़ी बहुत ये हो रही है इसे एक अस्थाई मान करके चले। आया हुआ एक भूकंप समझें, एक हल्का सा भूकंप आया है, धीरे धीरे चीजें बड़े आराम से संभल जाएंगी और फिर हम अपनी आगे की जर्नी शुरू कर देंगे। मित्रों और ये बात तो केवल एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जिंदगी के सारे दौर के लिए होता है कि जब भी हमारे सामने कोई इस तरह के संकट आते हैं, संकट की घड़ियों से हम जब जूझते हैं तो हमें सबसे ज्यादा आंतरिक बैलेंस की जरूरत पड़ती है, वही समय है जब हमें सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वो हिम्मत अभी फिलहाल दोनों ओर से दिखाई जानी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट पर जो AIR न्यूज का चरण है। AIR न्यूज आप लोगों ने सुना ही होगा, खासकर इस वाक्य को तो मैं लगभग रोज ही कह लेता हूं और आप लोग भी शायद सुनते सुनते बोर हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों मैं क्या करूं, मतलब मैं भी रोज वही पैटर्न है, वही चीजें हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करता हूं कि उनमें बदलाव आ जाए, थोड़ी सी रोचकता आ जाए, लेकिन नॉलेज वही होती है, चीजें वही होती हैं। और मुश्किल काम यह है कि मैं AIR और न्यूज़पेपर को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये उसका एक तरह से जीवन प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन है। आपकी सिविल सर्विस की तैयारी हो या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हो, ये एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन है या दिल की धड़कन है। दिल की धड़कन के बिना आप कैसे रह सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के बिना तो पैरालिटिक अटैक हो जाएगा हमारी बॉडी को। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या इसकी जगह मुझे कुछ दूसरा शुरू कर देना चाहिए ताकि आप लोग बोर ना हो। फिर मैं सोचता हूं कि यार मैं दूसरा अगर शुरू करूं भी तो क्या शुरू करूं। ऑप्शनल पेपर शुरू कर सकता हूं, इंटरव्यू शुरू कर सकता हूं, कोई और पेपर लेकर के बात कर सकता हूं, विषय लेके बात विषय पे चर्चा कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं, लेकिन फिर ये छूट जाएगा। और इसके छूटने का मतलब है कि दिल की धड़कन का बंद हो जाना, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पार्ट है वो यही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप ऑप्शनल पेपर को छोड़ दें, वैसे तो ह्यूमैनिटी के ऑप्शनल में भी ये मदद करता है, तो सबसे ज्यादा जो तैयारी आपका 3/4 जो आपकी तैयारी होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, वो केवल न्यूज़पेपर और न्यूज से होती है, उसके एनालिसिस पावर से होती है। तो मुझे लगता है कि इसके जरिए मैं लगभग लगभग आप लोगों की 75% तैयारी कर देता हूं, तो करा देता हूं। तो इस 75% को छोड़ करके मैं 25% वाले हिस्से में क्यों जाऊं, मैं इतने घाटे का सौदा क्यों करूं। तो इसीलिए मित्रों, थोड़ा सा इसको बियर करके चलिएगा, तो बहुत से वाक्य वही होते हैं, बहुत सी चीजें वही होती हैं, उसके लिए कुछ दूसरा उपाय नहीं सूझता है। तो मान करके चलिए कि जिस तरह से हम रोज भोजन करते हैं उससे उबते नहीं हैं, रोज सोते हैं उससे उबते नहीं हैं, ठीक इसी तरह से ये भी है कि जब तक आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे रोज सुनेंगे और मुझे यकीन है कि आप उबेंगे नहीं। और वैसे मैं ईमानदारी के साथ अपनी बात बताऊं मित्रों, कि मैं रोज आप लोगों से चर्चा करता हूं, और इनफैक्ट पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कबूल करता हूं कि मैं उबता नहीं हूं। मुझे मजा आता है, बल्कि जिस दिन किसी कारण से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, और खासकर सैटरडे संडे को तो होता ही है, तो उस दिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा सूना भी सा भी लगता है, लेकिन वो भी जीवन की एक अलग तरीके की मांग होती है, तैयारी की भी हमारी मांग होती है कि बीच में आपको गैप मिलना चाहिए, तो वो भी ठीक है, उसे मैं बियर करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल के जो आकाशवाणी की जो खबरें थी उसमें 3 खबरें आपके लिए थोड़ी थोड़ी ध्यान इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आपने देखा कि किस तरीके से जो एक असहिष्णुता समाज में जो फैलने की जो बात कही जा रही थी, साहित्य अकेडमी अवार्ड लौटाया जा रहा, इस तरह की घटनाएं हुई, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे करते करते अब ये जो घटनाएं थी, अब आप देख रहे हैं कि कैसे पहले इक्की दुक्की घटनाएं हुई है ना, एक दो क्षेत्र में हुई, पहले मान लीजिए कि एक साहित्यकार की हत्या हो गई, इसके बाद फिर बीफ गोमांस को लेकर के मामला चला, तो फिर दाउदरी कांड हो गया, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की घटनाएं होने लगी। पहले छुटपुट छुटपुट घटनाएं हो रही थी, इसके बाद फिर ये घटनाएं इकट्ठे होकर के एक शेप लेने लगी, और ये लगने लगा जैसे कि समाज में एक असहिष्णुता का माहौल बन रहा है। फिर जो साहित्य अकेडमी अवार्डी थे उन्होंने अपने अवार्ड लौटाने शुरू कर दिए, इसके बाद कुछ लोगों ने अब पद्मश्री पद्म भूषण ये सब भी लौटाने शुरू कर दिए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे घटनाएं जुड़ते जुड़ते एक रूप ले लेती हैं, है ना, एक शेप ले लेती है। और जब कोई भी घटना इस तरह की शेप ले लेती है, खासकर यदि वो सोशल इवेंट है, तो अगर वो सामाजिक घटना है, तो आपको मानकर चलना चाहिए कि ये सिविल सर्विस के लिए एक अब इंपॉर्टेंट घटना हो गई है। और मैं आपको बीच बीच में याद भी दिलाता रहा हूं इस बात की। अब आप देखिए कि उसका नतीजा ये हुआ कि कल की आकाशवाणी के समाचार में ये एक तरीके से न्यूज का हिस्सा बन गया, और एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, न्यूज की हेडलाइंस बन गई। अब मित्रों, अब आप देखिए कि चीजें कैसे शिफ्ट हो रही हैं, है ना। न्यूज में अगर आपने ध्यान दिया हो तो न्यूज में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो धर्म निरपेक्षता का इस्तेमाल हुआ। हालांकि हमारे संविधान में जो सेकुलरिज्म का जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो पंथ निरपेक्षता है। अगर आप देखेंगे शब्द ओरिजिनल संविधान में जाकर के देखिए तो पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है। हालांकि दोनों काफी कुछ, मतलब बिल्कुल एक न होते हुए भी काफी कुछ एक ही है, लेकिन धर्म निरपेक्षता शब्द इतना चल चुका है कि सामान्य रूप में अब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है, तो आप दोनों को एक मानकर चल सकते हैं। तो अब देखिए कि असहिष्णु समाज, सांप्रदायिक तनाव, और अब तीसरा हमारे सामने हमारे पास शब्द आ गया है धर्म निरपेक्षता। तो मित्रों, ये तीन शब्द हैं और इन तीनों शब्दों के जो शेड्स के जो अंतर हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए, आपके बहुत पकड़ में होनी चाहिए, और परीक्षा में जब क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उस शब्द के अराउंड ही आप अपनी बात कहें। जैसे मैं थोड़ा सा आपको अंतर बता दूं कि असहिष्णुता का मतलब होता है कि समाज में सहनशीलता कम हो गई है। अब ये देखिए कि सहनशीलता कैसे कम हो गई है, या कह लीजिए संवेदनशीलता कम हो गई है, उसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग इतने असंवेदनशील हो गए, असहिष्णु हो गए हों कि तनाव बढ़ गया हो समाज में। ये हुआ आपका असहिष्णु समाज, जो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, राइट। लेकिन जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो हालांकि वो भी असहिष्णु समाज ही होगा, लेकिन इसमें गुट होंगे, समूह होंगे, और वो समूह के आधार पर विभाजित होंगे। सांप्रदायिकता का मान लीजिए कि एक संप्रदाय है, दूसरा संप्रदाय है, तो इस संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को नहीं चाह रहे हैं, असहिष्णु हैं, और दूसरा संप्रदाय जो है ना पहले संप्रदाय को नहीं चाह रहा है, और फलस्वरूप दोनों एक दूसरे की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, राइट। तो यह हो गया सांप्रदायिक तनाव। और जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्म निरपेक्षता मित्रों बेसिकली ये जो शब्द है ये व्यक् ति का नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, ये स्टेट का है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि मैं, मान लीजिए कि मैं विजय अग्रवाल एक हिंदू होने के नाते मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, जो भी मुझे पसंद आता है वो सब मैं करता हूं, ठीक है। एक रजा मुराद साहब हैं, वो अपना जो मुस्लिम इस्लाम जो है वो उसको मानते हैं, उसको करते हैं। एक एंटोनी है, वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो क्रिश्चियन को करते हैं। तो व्यक्ति के रूप में तो हम सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं और उसके हिसाब से हम उपासना करते हैं, और हमारे संविधान ने हमें इसकी स्वतंत्रता भी दी है। लेकिन जब स्टेट की धर्म निरपेक्षता की बात हम करते हैं, और धर्म निरपेक्षता मूलतः स्टेट की ही होती है, तब उसमें यह आता है कि राज्य यानी कि देश किसी विशेष धर्म को न तो प्रोत्साहित करेगा और न किसी विशेष धर्म को हतोत्साहित करेगा। चाहे कानून हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे सभी के सामने सभी धर्म के लोग समान रूप से ट्रीट किए जाएंगे। तो ये सेकुलरिज्म होता है। व्यक्ति में जो धर्म निरपेक्षता होगी वो एक तरह से प्रगतिशीलता का रूप ले लेती है, वो उदारवादी विचारों का रूप ले लेती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक हिंदू धर्म का व्यक्ति बाकी सभी धर्मों को समान मान रहा है, एक इस्लाम का व्यक्ति अपने धर्म की उपासना तो कर रहा है लेकिन वो दूसरे धर्मों को भी सम्मान दे रहा है, तो इस तरह के उसकी भावनाओं को, विचारों को, उसकी क्रियाओं को, चेष्टाओं को हम धर्म निरपेक्ष चेष्टाएं नहीं कहते, धर्म निरपेक्ष विचार नहीं कहते हम। बेसिकली उनको कहते हैं कि नहीं, वो बड़ा उदारवादी है, वो बड़ा प्रगतिशील विचारों का है, बड़ा प्रोग्रेसिव अप्रोच का व्यक्ति है। तो मित्रों, ये तीन शब्द हैं और इन तीन शब्दों पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस के मेन एग्जामिनेशन में जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम पर्यायवाची मान करके फटाफट फटाफट जो भी मन में आता है लिखना शुरू कर देते हैं और वहां थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपको देखना यह होगा कि ये जो समाज में जो असहिष्णुता फैल रही है, या समाज में जो कहा जा रहा है कि जो तनाव की स्थिति बन रही है, चाहे असहिष्णुता हो, चाहे वो सांप्रदायिक तनाव हो, या धर्म निरपेक्षता की का अवमूल्यन हो रहा हो, छीज रही हो धर्म निरपेक्षता, ये जो चीजें हैं, अब आपको खासकर अब जो इसका मूल्यांकन करना है, ये मूल्यांकन दो तीन आधार पर आपको करने चाहिए। नंबर एक, राजनीति।
कि इसमें राजनीति का कितना योगदान है, किस किस तरह की राजनीति हो रही है और राजनीति कैसे इसको उकसा रही है, प्रश्रय दे रही है या इसको कम कर रही है, खत्म कर रही है, कौन सी पार्टियां हैं, किस किस तरह के उनके एक्शंस हैं, एक तैयारी आपके इस एंगल से होनी चाहिए। दूसरा जो एंगल होना चाहिए वो स्टेट होना चाहिए, यानी कि सरकार, कि सरकार इन घटनाओं को, इन रूपों को किस रूप में ले रही, किस तरीके से ले रही है, वो क्या कर रही है। दूसरा, तीसरा होगा समाज खुद में क्या कर रहा है, क्योंकि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सारी चीजें कानून पर नहीं छोड़ सकते, हम सारे मतलब नहीं कह सकते भैया कानून इसको देखे या सरकार ही देखे, समाज के नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप देखें कि अभी जो एवआरडी थे उन्होंने लौटाया, तो अपने ढंग से एक्शन ले रहे हैं। कोई लोग इसका विरोध करेंगे, इस तरह की घटनाओं का विरोध करते हैं, तो वहां समाज उठ करके खड़ा होता है, जिसे हम सिविल सोसाइटीज भी कहते हैं। तो ये तीन एंगल से आप देखने और समझने की कोशिश इन घटनाओं को कीजिएगा, तब यही विषय जो पता नहीं कब से चला आ रहा है या बड़े सामान्य तरीके से जिस पर हम बातचीत करते हैं, आप देखेंगे कि उसमें कंटेंट आने लगेगा, उसमें विचारों की एक तरह से गर्मी दिखाई देने लगेगी, विचारों की चमक दिखाई देने लगेगी, और उसका संबंध बिल्कुल अभी कंटेम्परेरी चीजों से हो जाएगा, जो अभी दिखाई दे रहा है, जो अभी हो रहा है उससे हो जाएगा, और यही सिविल सर्विस के मेंस में चाहिए, इसी की जरूरत होती है। दोस्तों, जो दूसरी खबर थी वो एक छोटी सी ही खबर थी, लेकिन आपके दिमाग में वो दर्ज हो जानी चाहिए। वो ये थी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि अब, पहले आपको मालूम हम लोग के समय में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रोजगार कार्यालय हुआ करते थे, जहां पढ़े लिखे स्टूडेंट जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा देते थे। उसकी जगह पर अब केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय रोजगार परामर्श केंद्र खोले जाएंगे, ये एक परिवर्तन है, और मैं समझता हूं ये ज्यादा व्यावहारिक भी है, कि अगर वो स्टूडेंट कोई जाता है, मतलब कोई भी अगर रोजगार के लिए जाता है, तो उसको बताया जा सके, उसको सलाह दी जा सके, उसकी काउंसलिंग की जा सके, उसको वहां भेजा जा सके, तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है राष्ट्रीय रोजगार परामर्श केंद्र का। दोस्तों, जो तीसरी खबर थी वो ये थी कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो इजराइल पहुंच गए हैं। आपने देखा कि पहले हमारे राष्ट्रपति जी जॉर्डन गए, फिर फिलिस्तीन गए, फिर इजराइल गए, और अब उनकी यात्रा के अंतिम चरण पर है। मित्रों, आप देखेंगे कि अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो जो फिलिस्तीनी और इजराइल हैं वो एक दूसरे के एक तरह से विरोधी हैं, दोनों में बड़ा लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा है, और सच पूछे तो अभी भी चलता ही रहता है। भारत के लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए कि कैसे उन्होंने इजराइल के साथ साथ, मतलब फिलिस्तीनी के साथ साथ इजराइल की भी यात्रा रखी है, कि डिप्लोमेटिक अप्रोच होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई हमारा ना तो स्थायी शत्रु होता है और ना कोई स्थायी मित्र होता है, बल्कि सच पूछे तो सभी के सभी मित्र ही होते हैं। दोनों देश अपने आपस की जरूरतों के हिसाब से एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने संबंधों को विकसित करते हैं। तो मेरी सलाह है मित्रों कि आप सब नक्शे में बकायदे देखें, जॉर्डन, फिलिस्तीनी, इजराइल, और ध्यान से देखें ये सब कहां पर हैं, किस कितनी कितनी दूरी पर हैं, इनके आसपास और क्या है, कि कोई महासागर है, कोई पहाड़ है, कोई नदी है, क्या है। थोड़ा सा आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, और इन 10 मिनट में आप इसके बारे में ढेर सारी चीजें जान जाएंगे, और आप देखते हैं कि प्री में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं, तो इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों, बस ये तीन खबरें थी। एक बात मैं आपको कहना आपसे कहना चाहूंगा कि इजराइल इस मायने में बहुत आगे है टपक सिंचाई योजना के मामले में। वो रेगिस्तानी इलाका है ज्यादातर, वहां पानी की बहुत कमी है, लेकिन खेती में अब वो बहुत आगे बढ़ गया। उसके पास मतलब बिना पानी की खेती, बिना पानी की तो नहीं कहना चाहिए, बहुत कम पानी में खेती करने की बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और भारत उससे संबंध में काफी टपक सिंचाई प्रणाली उससे ले भी रहा है। खेती की बहुत सी प्रणालियां हमने ली हैं। टपक सिंचाई प्रणाली का मतलब है कि हम पेड़ों के पौधों की जड़ों में पानी टपका टपका करके डालते हैं, तो उससे पानी वेस्ट नहीं होता और कम पानी में बहुत अच्छा उत्पादन हो जाता है। अब शायद जैसे ही राष्ट्रपति जी की यात्रा पूरी होगी, तो आप देखेंगे कि उनकी यात्रा पर कुछ शायद आर्टिकल्स आए, क्योंकि फिलिस्तीनी और इजराइल खासकर ये दो देशों की यात्रा बहुत मायने रखती है, और आप लोगों ने न्यूज में सुना है कि ये किसी भी भारत के राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली यात्रा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत की विदेश नीति कैसे धीरे धीरे अब एक दूसरी तरह का शेप ले रही है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स पर। न्यूज़पेपर्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको न्यूज आइटम प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, ये दैनिक भास्कर का है और इसका संबंध इस बात से है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सरकार बताए कि वो पर्सनल लॉ के बारे में क्या कर रही है। पर्सनल लॉ वो ला रही है, पर्सनल लॉ में की जगह पर वो समान सिविल कोड ला रही है या नहीं ला रही है, समान नागरिक संहिता जिसको कहते हैं। इसका संबंध इसी बात से है कि जैसे आपने देखा कि जो इस्लाम में है उनके विवाह की परंपराएं अलग है, तलाक की परंपरा अलग है, गुजारा भत्ता अलग है, हिंदुओं की अलग है, क्रिश्चियनिटी की अलग है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के या न्यायालय के सामने जब इस तरह के मामले जाते हैं तो वो बड़ा चक्कर में पड़ जाता है। कहीं पर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है मौलिक अधिकार के, कहीं जीवन का उल्लंघन अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कहीं समानता का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे मामलों में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो सरकार लगातार, खासकर अभी जो सरकार सत्ता में है उसने वो तो लगातार समान नागरिक संहिता के पक्ष में रही है और बात भी करती रही है। तो उन्होंने सरकार से पूछा कि भैया बताइए कि आप इसको कब तक लाएंगे भी या नहीं लाएंगे, क्योंकि उसको उसका सिरदर्द हो गया है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का है, इसमें जुडिशियरी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और एक तरह से मानव अधिकार भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप लोग डेफिनेटली देखिएगा और बल्कि इसको रख भी लीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर क्लिपिंग है मित्रों, वो ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने खासकर हाइड्रो पावर स्टेशन की स्थापना कर दी है, वो शुरू भी हो गया है। उसको लेकर के ये माना जा रहा है कि वहां बटने चुड़ैल की चीन ने बांध बनाया है और उसकी वजह से जो पानी का प्रवाह है, ब्रह्मपुत्र का प्रवाह, वो भारत में काफी कम हो जाएगा ये माना जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकल करके चलती हुई और भारत में बांग्लादेश होते हुए भारत में आती है। तो मित्रों, इस स्थिति में क्योंकि हमारे यहां भी अरुणाचल प्रदेश में कुछ परियोजनाएं हैं जो कि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह पर निर्भर करती हैं और यदि वहां से भी प्रवाह कम हमें मिला तो हमारी योजनाओं पर फर्क पड़ सकता है। तो ये एक छोटी सी घटना है। अब इसका भारत और चीन के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा, आगे आने पर हम लोगों को पता लगेगा। लेकिन ये एक खबर है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इंटरनेशनल रिलेशन चूंकि चीन से जुड़ा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। जो नदी है ब्रह्मपुत्र, आपको चाहिए कि आप भी उसको एक लोकेट कर ले मैप में कि कैसे ये तिब्बत से निकल करके भारत में एंटर करती है, वही नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश की तरफ से और फिर वो बांग्लादेश को चली जाती है। तो मित्रों, ये इंपॉर्टेंट खबर है। बाकी ढेर सारी न्यूज क्लिपिंग्स आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, अच्छा खासा मटेरियल है और ये आपसे अच्छे खासे टाइम की मांग करेगा और आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं ईमेल पर। मेरे पास एक मेल है प्रेम का, जो दिल्ली से अभी अक्टूबर की क्लास में भोपाल आ रहे हैं क्लास अटेंड करने के लिए। इन्होंने लिखा है कि जो भी स्टूडेंट उनसे कांटेक्ट करना चाहें वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9953456668। मित्रों, अब जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत से मेल आज मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से जो मैं नाम लेने जा रहा हूं कुछ लोगों के, उनकी भी संख्या थोड़ी सी अधिक है। तो जिनके मैं नाम ले रहा हूं उन्हें और जिनके नाम नहीं ले पा रहा उन्हें भी, सभी को मेल लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इन्हीं में से कुछ के नाम है मित्रों, दिलीप कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से, नीलेश तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से, रजिया इलाहाबाद से, अशोक सिंह आजमगढ़ से, धीरेंद्र प्रताप सिंह एटा से, सिंपी कुमारी बेगूसराय बिहार से, विशाल कदम पुणे से, संकेत महादिक ठाणे महाराष्ट्र से, डॉक्टर दीपिका अजमेर से, वरुण पांडे इलाहाबाद से, अंशिता गोरखपुर से, उत्कर्ष दीप पटना से, कविता सिरोहिया ग्वालियर से, सौरभ पाठक पटना से, उपेंद्र गौतम बालाघाट मध्य प्रदेश से, पंकज शर्मा पुणे से, पवन पाठक पुणे से, देवेंद्र शर्मा जयपुर से, विपुल वार्ष्णेय बरेली उत्तर प्रदेश से, विकास चौहान दिल्ली से और सत्येंद्र सिंह इलाहाबाद से। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार और इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।